जाति व्यवस्था के अंतर्गत अगली हेडिंग है जाति एक विचारधारा के रूप में। जाति व्यवस्था के प्रकृति को समझने के लिए यह जानना भी आवश्यक है कि भारत में जाति व्यवस्था की एक निश्चित संरचना होने के कारण इसे एक दृढ़ सामाजिक व्यवस्था मानना उचित है अथवा जाति को एक वैचारिक अथवा सांस्कृतिक व्यवस्था माना जा सकता है। इस संबंध में लुई ड्यूमा, आंद्रे बेताई, मैकी मैरियट तथा श्रीनिवासन ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। लुई ड्यूमा ने अपनी पुस्तक होमो हायरार्किसिस में स्पष्ट किया है कि भारतीय जाति व्यवस्था असमानता पर आधारित संस्करण की एक विशेष प्रणाली है। इसका तात्पर्य यह है कि जाति व्यवस्था में सभी जातियों की स्थिति एक दूसरे की तुलना में ऊंची अथवा नीची है। इस प्रणाली में ब्राह्मणों की स्थिति सबसे ऊंची है जबकि अपवित्र कार्य करने वाली जातियों की स्थिति सबसे निम्न है। इससे स्पष्ट होता है कि विभिन्न जातियों की स्थिति का आधार पवित्रता और अपवित्रता संबंधी विचार ही है। पवित्रता और अपवित्रता का संबंध व्यक्तियों के विचारों और मूल्यों के होने के कारण जाति व्यवस्था को एक विशेष विचारधारा अथवा दर्शन पर आधारित सांस्कृतिक व्यवस्था ही माना जा सकता है। यही विचार मूल्य व्यक्तियों को मनोवैज्ञानिक रूप से प्रभावित करके उनके व्यवहारों का निर्धारण करते हैं। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि जाति व्यवस्था को किन्हीं आर्थिक अथवा राजनीतिक आधारों पर नहीं समझा जा सकता। इस व्यवस्था का वास्तविक आधार वैचारिक और सांस्कृतिक है। वैचारिक आधार पर पवित्रता और अपवित्रता संबंधी धाराओं से ही उन नियमों और निषेधों का विकास हुआ है जिनके द्वारा विभिन्न जातियों के बीच खान पान, व्यवसाय और विवाह संबंधी विभेद निर्धारित हुए। पवित्रता और अपवित्रता के आधार पर ही पवित्र कार्य करने वाले ब्राह्मणों को इस व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान मिला जबकि गंदे कार्यों से संबंधित व्यक्तियों को सबसे नीची स्थिति प्राप्त हुई। बाद में जब विभिन्न जातियों के संस्करण को धर्म से जोड़ दिया गया तब भी पवित्रता और अपवित्रता से संबंधित विचारों की भूमिका प्रमुख रही है। यदि हम ग्रामीण और नगरीय समुदाय में जाति व्यवस्था की प्रकृति को देखें तब भी यही स्पष्ट होता है कि जाति एक विशेष विचारधारा पर आधारित सांस्कृतिक व्यवस्था है। ग्रामीण समुदायों में जाति को एक विशेष परिस्थिति समूह कहा जा सकता है। इसका कारण यह है कि यहाँ जाति के द्वारा ही व्यवहार संबंधी विभिन्न नियमों को लागू किया जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि जाति के नियम ही व्यक्ति को यह बताते हैं कि उसे किन व्यक्तियों के साथ सामाजिक संपर्क, खान पान और विवाह के संबंध स्थापित करने हैं। व्यक्ति यदि इन नियमों का उल्लंघन करता है तो उसे अपने जातिगत संगठन अथवा जाति पंचायत द्वारा सामाजिक रूप से दंडित किया जाता है। दूसरी ओर यदि हम नगरीय क्षेत्रों में व्यापक दृष्टिकोण से विचार करें तो स्पष्ट होता है कि जाति एक परिस्थिति समूह न होकर केवल विभिन्न समूहों के बीच एकता और सहयोग स्थापित करने का एक साधन मात्र है। उदाहरण के लिए एक तमिल ब्राह्मण तथा उत्तर प्रदेश के एक काव्य कुंज ब्राह्मण के बीच केवल इस कारण विवाह संबंध नहीं होते कि उनके विचार और संस्कृति एक दूसरे से भिन्न है। इसके बाद भी किसी सामान्य हित के विषय पर वे समान वंश की भावना से प्रभावित होने के कारण एक दूसरे को सहयोग दे सकते हैं। इससे भी यह स्पष्ट होता है कि जाति एक वैचारिक तथा सांस्कृतिक व्यवस्था है। एक अन्य प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि क्या जाति एक हित समूह है। वास्तविकता यह है कि सामाजिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से अधिकांश व्यक्ति अपनी जाति को कुछ विशेष हितों को पूरा करने का एक साधन के रूप में देखते हैं। एक विशेष क्षेत्र में जाति की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति के आधार पर ही इस बात का निर्धारण होता है कि वह अपने कितने अधिक हितों को पूरा कर सकती है। ग्रामीण स्तर से लेकर विधानसभा और संसद के स्तर तक होने वाले विभिन्न चुनावों में जातियां हित समूहों के रूप में ही कार्य करती हैं। इससे स्पष्ट होता है कि जाति व्यवस्था के अंतर्गत आज परंपरागत नियमों का उतना महत्व नहीं है जितना कि सांस्कृतिक आधार पर विकसित होने वाले सहयोग की भावना का। आंद्रे बेताई का कथन है कि जाति व्यवस्था को समझने के लिए जब हम इसे एक विचारधारा अथवा सांस्कृतिक व्यवस्था के रूप में स्पष्ट करते हैं तब इसका संरचनात्मक पक्ष स्पष्ट नहीं हो पाता। इसका तात्पर्य यह है कि यदि सांस्कृतिक संदर्भ में हम केवल पवित्रता और अपवित्रता के आधार पर विभिन्न जातियों के संबंधों की विवेचना करते हैं तो यह समझना कठिन हो जाता है कि विभिन्न जातियों में से कुछ को अधिक और कुछ को कम अधिकार क्यों दिए गए हैं। उच्च जातियों द्वारा निम्न जातियों का शोषण क्यों किया गया तथा आर्थिक साधनों पर उच्च जातियों का ही अधिकार क्यों रहा। व्यवहारिक रूप से जातिगत आधार पर ही यह निश्चित होता है कि उच्च और निम्न जातियों में से किस जाति के व्यक्ति भूस्वामी अथवा भूमिहीन किसान होंगे। अथवा किस जाति के व्यक्तियों का उत्पादन के साधनों पर कितना अधिक अधिकार होगा। इसका तात्पर्य है कि जाति व्यवस्था को समझने के लिए इसके सांस्कृतिक पक्ष को समझने के साथ ही संरचनात्मक पक्ष को समझना भी आवश्यक है। मौलिक रूप से जाति व्यवस्था एक विशेष विचारधारा है जो विभिन्न जातियों को एक दूसरे का पूरक मानते हुए उनके बीच किसी तरह के विरोध को मान्यता नहीं देती। इसका सर्वोत्तम प्रमाण यजमानी व्यवस्था है, जिसके द्वारा सभी जातियों को एक दूसरे को सहयोग देने का कार्य सौंपा गया। श्रीनिवास ने भी संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के द्वारा यह स्पष्ट किया है कि जाति का संरचनात्मक पक्ष कमजोर पड़ता जा रहा है, लेकिन विचारधारा के रूप में जाति व्यवस्था का अस्तित्व बना हुआ है। निम्न जातियों द्वारा उच्च जातियों के व्यवहारों और कर्मकांडों का अनुसरण करने की वर्तमान प्रवृत्ति से यह स्पष्ट होता है कि विभिन्न जातियों की परंपरागत स्थिति में काफी परिवर्तन हो गया है, लेकिन स्वयं जाति व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। लुई ड्यूमन ने भी इसी बात को स्वीकार करते हुए लिखा है कि भारतीय समाज में विभिन्न जाति समूहों की स्थिति में परिवर्तन होने से समाज के अंदर कुछ परिवर्तन अवश्य हुए हैं, लेकिन स्वयं समाज का परिवर्तन नहीं हुआ। इससे भी यह अधिक स्पष्ट होता है कि जाति व्यवस्था को एक विचारधारा अथवा सांस्कृतिक व्यवस्था मानना ही अधिक उचित है। हेडिंग है जाति तथा वर्ण। उपयुक्त संपूर्ण विवेचन से स्पष्ट होता है कि जाति व्यवस्था को पूर्णतया वर्ण व्यवस्था से पृथक करके नहीं समझा जा सकता। इन दोनों के बीच घनिष्ठ संबंध है। सर्वप्रथम वर्ण व्यवस्था के सिद्धांत के आधार पर ही हजारों जातियों का निर्माण हुआ, और बाद में जब कभी विभिन्न वर्णों के सदस्यों ने अपने अपने वर्ण धर्म का पालन करने में उदासीनता दिखाई, उनके द्वारा नए जातिगत समूहों के निर्माण को प्रोत्साहन मिला। जाति व्यवस्था के अंतर्गत खान पान, विवाह, सामाजिक संपर्क और पवित्रता संबंधी सभी नियम वर्ण व्यवस्था के नियमों पर ही आधारित है। संभवतः इसीलिए होकार्ट और उसके अनुयायियों का मत है कि वर्ण और जाति में केवल नाम का ही भेद है, कार्यों का नहीं। वास्तविकता यह है कि जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था के सिद्धांतों पर आधारित होने के बाद भी उससे बहुत भिन्न है। यदि शाब्दिक अर्थ की ओर ध्यान दिया जाए तो स्पष्ट होता है कि वर्ण शब्द वरी धातु से बना है, जिसका अर्थ है वर्ण करना अथवा चुनना। इस प्रकार एक विशेष व्यवसाय को चुनने वाले व्यक्ति एक विशेष वर्ण के सदस्य कहलाते थे। आरंभ में वर्ण व्यवस्था का विभाजन इतना उदार और लोचपूर्ण था कि व्यक्ति अपने गुणों के अनुसार किसी भी वर्ण का सदस्य बन सकता था। इस प्रकार वर्ण व्यवस्था कार्यात्मक दृष्टिकोण से विभाजन की एक सुविधापूर्ण प्रणाली थी, स्तरीकरण का एक स्थिर रूप नहीं। वर्ण व्यवस्था भेदभाव और प्रतिस्पर्धा पर आधारित न होकर विशेषीकरण से संबंधित है। जात व्यवस्था तो इसका केवल एक संकीर्ण रूप है। इस प्रकार निम्नांकित आधारों पर जाति और वर्ण के अंतर को स्पष्ट किया जा सकता है। पहला है, वर्ण व्यवस्था भारतीय सामाजिक जीवन की आरंभिक व्यवस्थाओं में से एक है। जाति व्यवस्था का इतिहास अधिक पुराना नहीं है। यह व्यवस्था बौद्ध और जैन धर्मों का ह्रास होने के बाद ही विकसित हो सके। दूसरा, वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत समाज का विभाजन केवल चार प्रमुख वर्णों में देखने को मिलता है, जबकि जात व्यवस्था लगभग 3000 जातियों और उपजातियों में विभाजित है। इस प्रकार एक वर्ण की अपेक्षा एक जाति का क्षेत्र बहुत संकुचित है। वर्ण विभाजन का आधार व्यक्ति के गुण और कर्म है, जबकि जाति व्यवस्था का एकमात्र आधार व्यक्ति का जन्म अथवा अनुवांशिकता है। चौथा, वर्ण व्यवस्था में खुलापन और उदारता है, अर्थात एक व्यक्ति के गुण और स्वभाव के आधार पर उसके वर्ण की सदस्यता बदल भी सकती है। डॉक्टर राधाकृष्णन का स्पष्ट मत है कि जन्म के समय प्रत्येक व्यक्ति शूद्र होता है और बाद में अपने कर्मों के अनुसार ही वह एक विशेष वर्ण की सदस्यता प्राप्त करता है। इसके विपरीत जाति व्यवस्था एक स्थिर व्यवस्था है, अर्थात व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता है वह आजीवन उसी जाति का सदस्य रहता है। पांचवा, वर्ण व्यवस्था समानता की नीति पर आधारित है। इसके अंतर्गत कार्यात्मक दृष्टिकोण में सभी वर्णों का समान महत्व है, उनमें किसी प्रकार ऊंच नीच नहीं है। महात्मा गांधी के अनुसार वर्ण व्यवस्था एक वैज्ञानिक तथ्य है, जिसका कार्य सभी के कर्तव्यों को स्पष्ट करके व्यक्ति को अवांछनीय प्रतिस्पर्धा से बचाना था। इसके पूर्णतया विपरीत जाति व्यवस्था कुछ निहित स्वार्थों पर आधारित असमानता का एक ज्वलंत उदाहरण है, जिसमें उच्च जातियों को सभी प्रकार के विशेष अधिकार दिए गए हैं और शूद्रों को सभी अधिकारों से वंचित कर दिया गया है। सभी जातियां इतनी संकीर्ण सामुदायिक भावना को प्रदर्शित करती हैं कि उनकी वर्ण व्यवस्था जैसे उदार नीति से तुलना नहीं की जा सकती। छठा, वर्ण व्यवस्था में लोच का गुण है। विभिन्न वर्णों के धर्म अथवा कर्तव्य पृथक पृथक होने पर भी इस व्यवस्था में अनुलोम विवाह अर्थात उच्च वर्ण के पुरुष से निम्न वर्ण की स्त्री का विवाह को स्वीकृति दी गई है, पर विशेषता वर्ण व्यवस्था के लचीलेपन और उदारता के गुण को अस्पष्ट करती है। इसके विपरीत जाति व्यवस्था में सभी जातियां पूर्णतया अंतर्विवाही हैं और किसी स्थिति में एक जाति के व्यक्ति को दूसरी जाति के अंतर्विवाह करने की अनुमति नहीं दी जाती है। सातवां, वर्ण व्यवस्था कर्तव्यों की व्याख्या से अधिक संबंधित है, जबकि जाति व्यवस्था पर बहुमत बहुत कम बल देकर केवल सामाजिक धार्मिक और वैवाहिक निषेधों पर ही अधिक बल दिया जाता है। आठवां, जैसा कि उक्त वर्णन से स्पष्ट है कि वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मणों की स्थिति केंद्रीय होते हुए भी सभी वर्णों के बीच आदान प्रदान का संबंध है, दूसरी ओर जाति व्यवस्था में प्रत्येक वर्ण से संबंधित सभी जातियां एक निश्चित संस्करण में रहते हुए एक दूसरे से पूर्णतया पृथक हो जाती हैं। अगली हेडिंग है जाति तथा वर्ग। जाति और वर्ग भी एक दूसरे से भिन्न धारणाएं हैं, यद्यपि यह सच है कि जाति और वर्ग दोनों ही सामाजिक स्तरीकरण के दो प्रमुख स्वरूप हैं, लेकिन जाति व्यवस्था में विभिन्न जातियों के निर्माण का एकमात्र आधार व्यक्ति का जन्म है, जबकि सामाजिक वर्गों का निर्माण व्यवसाय धन शिक्षा जीवन स्तर विचारों मनोभावों और इसी प्रकार के अनेक दूसरे आधारों पर होता है। आगबर्न और निमकाफ का कथन है कि एक सामाजिक वर्ग की मौलिक विशेषता अन्य सामाजिक वर्गों की तुलना में उसकी निम्न अथवा उच्च सामाजिक स्थिति है। इस कथन से यह भी स्पष्ट होता है कि वर्ग की सदस्यता का सबसे महत्वपूर्ण आधार व्यक्ति की सामाजिक स्थिति है और सामाजिक स्थिति में परिवर्तन हो जाने से व्यक्ति की एक विशेष वर्ग की सदस्यता में भी परिवर्तन हो जाता है। इस आधार पर जाति तथा वर्ग के बीच अनेक अंतरों का उल्लेख किया जा सकता है। इसके अंतर्गत पहली हेडिंग है जाति बंद है जबकि वर्ग में खुलापन है। जाति की सदस्यता जन्म पर आधारित होने के कारण व्यक्ति इसमें आजीवन किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकता। विभिन्न जातियों के नियम भी एक दूसरे से काफी भिन्न होने के कारण उनकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि एक दूसरे से भिन्न हो गई है। इसके विपरीत वर्ग की सदस्यता में किसी भी समय परिवर्तन हो सकता है। जैसे ही व्यक्ति की संपत्ति योग्यता और सामाजिक स्थिति में वृद्धि होती है वह पहले से अधिक उच्च वर्ग की सदस्यता प्राप्त कर लेता है। दूसरा, जाति का आधार जन्म है जबकि वर्ग सामाजिक स्थिति पर आधारित है। एक जात के सदस्य एक विशेष जात में जन्म लेने के कारण ही उसके सदस्य होते हैं। इस प्रकार एक ही जाति में विभिन्न प्रकार की योग्यता कुशलता और आर्थिक स्थिति वाले सदस्य होते हैं। इसके विपरीत एक वर्ग के सभी सदस्यों की योग्यता और सामाजिक स्थिति लगभग समान होती है, क्योंकि जैसे ही एक व्यक्ति की सामाजिक स्थिति अथवा योग्यता में अधिक परिवर्तन होता है उसकी एक विशेष वर्ग की सदस्यता भी अपने आप में परिवर्तित हो जाती है। तीसरा, जाति की सदस्यता प्रदत्त है जबकि वर्ग की सदस्यता अर्जित होती है। जाति की सदस्यता इस अर्थ में प्रदत्त है कि व्यक्ति इसे प्राप्त करने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करता, बल्कि यह जन्म के द्वारा उसे अपने आप प्राप्त हो जाती है। यही कारण है कि जाति अधिक स्थिर होती है, अर्थात इस पर व्यक्ति की विद्वता अज्ञानता निर्धनता अथवा संपन्नता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरी ओर एक विशेष वर्ग की सदस्यता प्राप्त करने अथवा पहले की अपेक्षा उच्च वर्ग में जाने के लिए व्यक्ति को बहुत जागरूक होकर प्रयत्न करने पड़ते हैं। इसी अर्थ में वर्ग की सदस्यता अर्जित है। चौथा, जाति का व्यवसाय निश्चित है वर्ग का नहीं। परंपरागत रूप से प्रत्येक जाति का पेशा पूर्व निर्धारित होता है और इसी के द्वारा जीविका उपार्जित करना सदस्यों का नैतिक दायित्व माना जाता है। वर्ग का आधार एक विशेष सामाजिक और आर्थिक स्थिति है जिसको किसी भी व्यवसाय के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। समाज की वर्गीय संरचना में किसी भी व्यक्ति के व्यवसाय का रूप पूर्व निर्धारित नहीं होता, बल्कि यह व्यक्ति की अपनी योग्यता और साधनों पर निर्भर होता है। पांचवा, जाति के व्यवहार संबंधी निषेध वर्ग से अधिक जटिल है। यद्यपि विद्वान विवाह सामाजिक संपर्क और खान पान के क्षेत्र में विभिन्न वर्ग भी एक दूसरे से कुछ दूरी बनाए रखते हैं, लेकिन ऐसा केवल व्यवहार में होता है, इसके लिए कोई निश्चित नियम नहीं होते। यही कारण है कि कभी कभी सर्वोच्च और निम्नतम वर्गों के बीच भी काफी मधुर संबंध होते हैं। जाति व्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में दूरी की भावना संस्थागत हो जाती है और इन नियमों की अवहेलना करना सामाजिक अपराध समझा जाता है। छठा, जाति व्यवस्था की अपेक्षा वर्ग व्यवस्था अस्थिर है। वर्ग की सदस्यता व्यक्ति की सामाजिक और आर्थिक स्थिति से संबंधित होने के कारण इसमें सदैव परिवर्तन होता रहता है। समाज की राजनीतिक और आर्थिक दशाओं में परिवर्तन होने के कारण वर्गीय संरचना में भी परिवर्तन होते देखे गए हैं। इसके विपरीत जाति व्यवस्था अपेक्षाकृत रूप से एक अस्थायी संगठन है। इसकी विशेषताओं में हजारों वर्षों के बाद भी अधिक परिवर्तन नहीं हुए हैं। सातवां, वर्गों की अपेक्षा जातियों में संस्करण अधिक निश्चित और अस्पष्ट होता है। यह संस्करण इतने निश्चित प्रकृति का है कि कोई व्यक्ति इसकी अवहेलना करने का प्रयत्न नहीं करता। इसके पूर्णतया विपरीत विभिन्न वर्गों में से किसी को भी महत्व और कार्य के दृष्टिकोण से दूसरे की अपेक्षा निम्न अथवा उच्च नहीं कहा जा सकता। यद्यपि मार्क्स ने पूंजीपति, मध्यम और श्रमिक वर्ग के एक निश्चित संस्करण का उल्लेख किया है, लेकिन उन्होंने यह नहीं कहा है कि यह वर्ग सामाजिक स्थिति के आधार पर भी एक दूसरे से भिन्न है। उपयोगिता के दृष्टिकोण से पूंजीपति वर्ग की अपेक्षा श्रमिक वर्ग ही अधिक महत्वपूर्ण होता है। वास्तव में वर्गों की संख्या इतनी अधिक है कि सामाजिक संरचना में भी सभी की स्थिति इतनी महत्वपूर्ण है कि किसी को भी दूसरे से उच्च अथवा निम्न नहीं कहा जा सकता। आठवां, वर्गों में प्रतियोगिता होती है, लेकिन जातियां सांस्कृतिक भिन्नता को स्पष्ट करती हैं। इस कथन को स्पष्ट करते हुए ब्राइस रेन का कथन है कि विभिन्न वर्गों के बीच प्रतियोगिता सदैव रहती है, लेकिन उनके बीच किसी प्रकार की सांस्कृतिक विभिन्नता बिल्कुल नहीं होती। विभिन्न वर्गों की सांस्कृतिक विशेषताएं एक दूसरे से बिल्कुल समान भी हो सकती हैं। इसके विपरीत विभिन्न जातियों की सांस्कृतिक विशेषताएं एक दूसरे से भिन्न भी हो सकती हैं। जाति व्यवस्था द्वारा उनके बीच प्रतियोगिता होने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया जाता।